फ्रांस के नीस में हुए आतंकवादी हमले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रवि वाजपेयी। रवि जी, ये जो घटना हुई है फ्रांस के नीस में, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या आपकी थॉट है? पिछले अगर हम इस साल की बात करें, 8 महीनों में पश्चिमी जगत में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, क्या समझा जाए इससे?
जय जी, नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये कि आज का दिन बहुत ही दुखद है और ये दुखद केवल यूरोप या फ्रांस के लिए नहीं है बल्कि सारी दुनिया के लिए है। ये हमें मानना होगा कि अब जो पहले आतंकी हमले होते आए हैं कहीं पर भी, अब उनका तरीका काफी हद तक बदल गया है। ये मानकर चलना कि कोई एक बड़ा संगठन किसी एक जगह से बैठकर लोगों को कोई काम करने के लिए निर्देशित कर रहा है तो वो नहीं है। अब ये हम मान सकते हैं कि किसी संगठन के बारे में धारणा बनाकर लोग स्वतः स्फूर्त होकर ये काम कर रहे हैं। ये हमला जो फ्रांस में हुआ है, ये दो बातें बताता है। पहली बात तो ये कि पूरे यूरोप में ऐसी आखिर क्या बात है कि लगातार हमले फ्रांस में हो रहे हैं। इसकी शुरुआत अगर हम कहना चाहें एक तरह से तो चार्ली हेब्दो से इसे जोड़ के देख सकते हैं कि पहले वहां से शुरुआत हुई थी। और दूसरा जो इसके साथ जुड़ा हुआ पक्ष ये है कि आखिर फ्रांस के अंदर सुरक्षा अधिकारियों की, सुरक्षा सैनिकों की और प्रशासन की ऐसी क्या कमजोरी रही है जिसके चलते आपातकाल स्थिति घोषित होने के बाद भी, अभी 2 दिन पहले हैरानी की बात चली थी, इस तरह के हमले संभव हो पाए हैं। तो क्या फ्रांस के अंदर लोगों में असंतोष बहुत ज्यादा है? क्या फ्रांस की सुरक्षा सेनाएं पूरी तरह से कारगर नहीं है? और तीसरा, यदि ये घटनाएं अकेले आदमी, जिसे हम लोन वुल्फ कहते हैं, के रूप में सामने आ रही हैं, तो ये एक बहुत ही खतरनाक धारणा की ओर इंगित करता है। और ये बात है जो आपने कहा कि इसकी समस्या का कैसे निपटा जाए, ये बेहद कठिन होगा अगर हर आदमी अपने आप में किसी नाराजगी, किसी असंतोष, किसी परेशानी के चलते इतने बड़े और इतने क्रूर तरीके से आम निहत्ते नागरिकों की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। ये एक बहुत खतरनाक धारणा है। जी
सर, ये बात बड़ी हिट करती है कि क्या अपनी निजी परेशानियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर हम देखें पिछले 40-45 वर्षों का इतिहास देखते हैं तो जिसे हम थर्ड वर्ल्ड कहा करते थे, अविकसित देश या विकासशील देश, वहां पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, मगर अब उसका स्पेक्ट्रम बदलकर वो विकसित देशों में ये धमाके या गोलाबारी या इस तरह की आतंकी हमले हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हो गया है कि ये हो रहा है।
जी हाँ, ये बात आपकी कहना बिल्कुल सही है कि एक तरह से अब आतंक का भी भूमंडलीकरण हो गया है इस ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में। 40 साल पहले या और उससे पहले भी विकसित या विकासशील देशों में ये घटनाएं आमतौर पर हुआ करती थी। और मुझको याद है, शायद आपको भी याद होगा, कि जब भारत में ऐसी घटनाएं होती थी तो BBC भारत के लोगों को इसके बारे में अपनी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पुनर्विचार करने को कहता था। बात यह है कि ये सारी घटनाएं जो हो रही है, आतंक जो होता है, वो केवल किसी एक सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कारण से नहीं हो रहा है। और यही एक कारण है जिसके चलते कोई एक कारगर रणनीति बनाना और उस पर अमल कर पाना न तो संभव है और न वैसा करने के बाद आतंक रुकेगा यह कह पाना निश्चित है। विकासशील और विकसित देशों के साथ अपनी समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जिस चीज को हम लोग ने माना कि नेशन स्टेट जिसे कहा जाता है या राष्ट्र राज्य, ये परिकल्पना यूरोप में आई। कॉलोनियल पावर जब हटे तो उन्होंने उन देशों को अपने हिसाब से आड़े तिरछे नक्शे काटकर बनाकर नए नए देश घोषित कर दिया। अब ये नए जो राष्ट्र राज्य बनाए गए, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग संगठन, समूह, सामाजिक व्यवस्थाएं थी जिनको एक कृत्रिम प्रकार से मजबूर करके एक साथ रहने को कहा गया और वहां पर लड़ाइयां फिर शुरू हुई। ये तो हुई विकासशील और विकसित देशों की बात, विकासशील देशों की बात। अब आइए विकसित राज्यों में, जैसे कि पाश्चात्य जगत जिसे हम कहते हैं, यूरोप हुआ, नॉर्थ अमेरिका हुआ। जो लोग विकसित या विकासशील देशों से जो लोग यहाँ आ रहे थे, अधिकतर लोग अच्छी आर्थिक व्यवस्था देख करके, अच्छे रहने की व्यवस्था देख करके आ रहे थे। यहाँ पर लंबे समय तक रहने के बाद इनको आपस में ये लगा कि सामाजिक रूप में हम जिस बात को लेकर यहाँ आए थे कि सबकी बराबरी है, सबके समान अवसर है, सबको सम्मान है, वो शायद समाज में उस तरह परिलक्षित नहीं होता है और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी असंतोष को जन्म देता है। ये तो एक बात हुई। दूसरा और जो जुड़ा हुआ पक्ष है कि जिस तरह से अरब देशों में या अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में विकसित राज्यों ने, बड़ी ताकतों ने जिस तरह की राजनीति की है और करते चले आ रहे हैं, उससे यहां से आए हुए माइग्रेंट्स में, प्रवासियों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असंतोष है। अब वो कहना बड़ा गलत होगा ये कि उस असंतोष के चलते लोग इतनी बड़ी घटनाएं कर रहे हैं, ये पता कर पाना कि ये आखिर क्यों हो रहा है, किसी एक कारण से हो रहा है, बड़ा मुश्किल है, और इसीलिए क्या रणनीति होगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। जी
अंतिम सवाल रवि जी ये है कि क्या जो पश्चिम जगत है, जो विकसित वर्ल्ड है, वो जाग गया है अभी पिछले एक साल की घटनाओं के बाद, या फिर अभी भी वो रिएक्टिवली काम कर रहा है कि ये घटना हो गई, अच्छा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दें या कुछ और कर दें? क्या अभी एक समूह के तौर पर, अगर हम कहें कि यूनियन के तौर पर, दुनिया तैयार हो गई है इन घटनाओं या इन समस्याओं से जूझने के लिए?
दुनिया तैयार होने की कोशिश में है, लेकिन क्या दुनिया पूरी तरह तैयार हो पाएगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है कि जैसे एक अकेला आदमी किसी भी कारण से ये काम करता है, उसके अंदर झांक पाना और उसको रोक पाना बड़ी भारी समस्या है। अब हर देश को 24 घंटे सातों दिन 365 दिन के लिए इसराइल की तरह पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आप उस तरह की बात और उस तरह की व्यवस्था करना चाहेंगे तो जो सामान्य अधिकार है, नागरिक अधिकार है, लोगों को आजादी है और स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की है, जुड़ने की है, संगठन बनाने की, उन सब चीजों पर आपको कहीं ना कहीं बंदिशें लानी पड़ेंगी। तब ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा, उसके बाद भी कहां तक आप सफल हो पाएंगे ये कह पाना मुश्किल है। तो यदि पश्चात जगत इसके प्रति जाग भी गया है तो अब इन्हें ये सोचना होगा कि केवल फौजी, सैन्य या पुलिस की व्यवस्था मात्र बढ़ा देने से इस तरह के हमले रोक पाना, कम कर पाना संभव भले हो, रोक पाना संभव नहीं है।
रवि जी, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।